पृष्ठ संख्या 207, अध्याय 23, तबला वादन में नवनिर्मिति। कला का प्रस्तुतिकरण, कलाकार अपने गुरु द्वारा प्राप्त विद्या एवं अभ्यास के सहारे किया करता है। इस प्रस्तुति का उद्देश्य अपने को एवं श्रोताओं को आनंद प्राप्त हो, यही होता है। जब कलाकार अपने प्रस्तुतिकरण द्वारा श्रोताओं को प्रसन्न करता है, तब उसे हृदय से समाधान प्राप्त होता है। श्रोताओं के प्रभावित एवं आनंदित होने में निम्नांकित घटक कारणीभूत होते हैं। पहला, शास्त्र शुद्ध रूप में किया गया प्रस्तुतिकरण। दूसरा, गुरु की दी हुई तालीम के जरिए गुरु की गायकी या वादन का समर्थता के साथ किया गया प्रदर्शन। तीसरा, कलात्मक नवनिर्मिति युक्त प्रस्तुतिकरण। अभ्यास, विचार, चिंतन तथा गुरु की दी हुई तालीम के माध्यम से कलाकार अपने प्रस्तुतिकरण की ओर अध्ययनपूर्ण नज़र से देखता है और उसे खुद को कुछ नवीन प्रस्तुत करने की इच्छा होती है। उस बात पर विचार करते करते तदनुरूप गाने और बजाने में कुछ प्रयोग करके उस प्रयोग सिद्ध संगीत को वह प्रस्तुत किया करता है। इस प्रकार विचारों के मंथन एवं प्रतिभा के स्पर्श के फलस्वरूप किए गए प्रयोगों में से नवनिर्मिति संपन्न हुआ करती है। संगीत के प्रस्तुतिकरण का उद्देश्य सौंदर्य निर्मिति करना ही होता है। सौंदर्य निर्मिति के जो विविध कारण हैं, उनमें महत्वपूर्ण कारण है नवनिर्मिति। नवनिर्मिति से श्रोता को अनपेक्षित रीति से सुखद संगीतानुभव प्राप्त होता है। गुरु की परंपरागत तालीम में जब कला का प्रस्तुतिकरण समर्थता के साथ किया जाता है, तो श्रोता को उच्च प्राप्ति का आनंद प्राप्त होता है। किंतु वह आनंद अपेक्षित प्रस्तुतिकरण से निर्माण होने वाली कलात्मक अपेक्षा पूर्ति का होता है। समर्थ कलाकार कलात्मक अपेक्षा पूर्ति के साथ ही कल्पना शक्ति और प्रतिभा की सहायता से कला निर्मिति का अनपेक्षित आनंद प्रदान करने के लिए उत्सुक और प्रयत्नशील रहते हैं। यह नवनिर्मिति विविध प्रकार की होती है। कला के विविध अंगों में वह विद्यमान होती है। तबला वादन एक प्रयोगक्षम कला है। तबला वादन के प्रस्तुतिकरण में जो नवनिर्मिति होती आई है, उसके बारे में हम विचार करेंगे। पृष्ठ संख्या 208। इसके पहले हमने देखा है कि तबला वादन के प्रस्तुतिकरण में मूलभूत घटक है, पहला गढ़न, दूसरा भाषा और तीसरा निकास या रीति। इनमें से प्रत्येक घटक में नव निर्मिति हो गई है तथा भविष्य में भी हो सकती है। इस पर हम क्रमशः एक दृष्टिपात करें। घटक पहला, गढ़न, फॉर्म और विस्तारक्षम रचनाएं। कायदा और रेले में उस्तादों और पंडित लोगों ने विविध प्रकार की जितनी असली रचनाएं बनाना संभव था, उतनी बनाई। और बात सत्य भी है कि तबले में जो जो अक्षर एवं शब्द बजते हैं, उनकी सभी संभाव्य विस्तारक्षम रचनाएं बांधी जा चुकी हैं। ब, पूर्ण संकल्पित रचनाएं। गत टुकड़े की रचना प्रकारों का दो तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है। पहला, भाषा प्रधान रचनाएं, दूसरा गणित प्रधान रचनाएं। पहला, भाषा प्रधान रचनाएं। पुराने पारंपरिक तबले में उस्ताद और पंडित रचनाकारों ने विविध आकार की प्रमुखतः समृद्ध भाषा से सजी धजी असंख्य रचनाएं बांधी हैं। लगता है कि इस प्रकार की और असली नवीन रचनाएं बांधना लगभग संभव नहीं होगा। दूसरा, गणित प्रधान रचनाएं। यह गत टुकड़े का दूसरा भाग है। इसमें विविध नवीन हिसाब की रचनाएं संभाव्य हैं। अनेक ज्येष्ठ और युवक कलाकार ऐसी रचनाओं की प्रभावपूर्ण निर्मिति कर रहे हैं। समृद्ध भाषा और कलात्मक गणित का मेल करके नई रचनाएं बनाना रचनाकारों के लिए एक चुनौती है। दूसरा घटक, भाषा। तबले पर विविध स्थानों पर अलग अलग उंगलियों से आघात करके जिन अक्षरों का निर्माण करना संभव था वे सब बन चुके हैं, और ऐसे अक्षरों के शब्द एवं शब्दों की भाषा भी निर्माण हो चुकी है। संपूर्ण नवीन और असली स्वरूप के नए नाद निर्माण होने की संभावना नहीं दिखाई देती। तबले की भाषा विशेषतः चतरस्र एवं तिस्र जाति में निर्मित और विकसित हुई है। खानदानी तबले की भाषा गुरु भाव को व्यक्त करने के अनुरूप है, और कालांतर में यह पूर्णतः विकसित भी हुई है, किंतु कर्नाटकी संगीत के लघु भाव को व्यक्त करने वाले शब्दाक्षरों का इस्तेमाल अब हमारे तबले में शुरू हुआ है, और इसी लघु भाव की भाषा की सहायता से तबले में नवनिर्मिति होने लगी है, और आगे चलकर भी वह कुछ काल तक होती रहेगी। गुरु भाव की भाषा मात्रा को छेद कर यानी मात्रा के अंशात्मक रूप में व्यक्त नहीं होती, किंतु लघु भाव की भाषा से मात्रा सूक्ष्म काल में भी विभाजित होती है। ऐसी लघु भाव के स्वरूप की भाषा का प्रयोग उस्ताद अल्लाह रखा, पंडित सुरेश तलवलकर आदि कलाकार बहुत ही नए नए स्वरूप की रचनाओं के निर्माण में समर्थता के साथ कर रहे हैं। प्रशंसनीय बात यह है कि ये कलाकार लघु भाव की भाषा में मात्र रचनाएं नहीं बना रहे हैं, बल्कि रचनाओं का विस्तार भी उसी भाषा में समर्थता के साथ करते दिखाई देते हैं। घटक तीसरा, निकास और रीति। निकास के कौशल से चार परिणाम साध्य किए जा सकते हैं। पृष्ठ संख्या 209। पहला, नाद का छोटा बड़ापन। दूसरा, उसकी उच्च नीचता। तीसरा, उसकी जाति। और चौथा, वैचारिक विविधता और नवीनता। निकास के दृष्टिकोण से जो अलग अलग पद्धतियां निर्माण हुई हैं वे हैं शैली और घराने। यहाँ यह सवाल उठ खड़ा होता है कि इन विविध शैलियों में भला और नवनिर्मिति क्या हो सकती है, किंतु अपार कल्पना शक्ति रखने वाले उस्ताद जाकिर हुसैन ने निकास के क्षेत्र में पूरी सफलता के साथ एक स्वतंत्र शैली का निर्माण कर दिखाया है। उस्ताद जाकिर हुसैन को अपवाद के रूप में छोड़ दें तो यह दिखाई देता है कि आज तबले के निकासों में नवनिर्मिति नहीं हो रही है। तबले में फिलहाल नवनिर्मिति का जो अनुभव श्रोताओं को प्राप्त हो रहा है उस संबंध में कहना आवश्यक प्रतीत होता है कि पेशकार कायदा और रेला प्रकारों में पारंपरिक रचनाएं न बजाकर आजकल अनेक कलाकार स्वरचित पेशकार या कायदा बजाते हैं। संप्रति खानदानी रचनाएं न बजाने की पद्धति आरंभ हो गई है। ब, कलाकारों के द्वारा प्रस्तुत गत टुकड़ों की रचनाएं भी स्वरचित ही देखने को मिलती हैं। हिसाब से सम पर आने वाली रचना बांधना बहुत मुश्किल नहीं है। वह गणित का खेल है, किंतु आशयपूर्ण भाषा प्रधान कलात्मक रचनाओं की निर्मिति करना अत्यंत मुश्किल काम है, क्योंकि ये रचनाएं बंदिशें होती हैं और उनमें काव्य हो यह अपेक्षा होती है। पद्य रचा जा सकता है, वह पांडित्य का भाग है, किंतु काव्य निर्माण करना कठिन होता है, उसके लिए प्रतिभा के स्पर्श की आवश्यकता होती है। तबले में नव निर्मिति कैसे होती है, कहाँ होती है, सो हमने देखा। समृद्ध भाषा और कल्पनापूर्ण गणित की सहायता से स्तरीय नवरचना निर्माण करने वाले रचनाकार बहुत ही कम संख्या में होने के कारण और उसी समय नवनिर्मिति की आकर्षण बहुत से कलाकारों में होने से सामान्य स्तर की बहुत सी नई रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन उच्च स्तर की असली रचनाओं की निर्मिति अपवादात्मक रूप में ही दृष्टिगोचर होती है। पृष्ठ संख्या 210। प्रभावी कलात्मक नवरचना निर्मिति के लिए उपयुक्त गुण। नवनिर्मिति के लिए कौन से गुण सहायक होते हैं यह भी देखना उचित है। मेरी दृष्टि में नवनिर्मिति बुद्धि की अभिव्यक्ति होती है और ऐसे कुछ खास बौद्धिक गुण जब कलाकार में होते हैं तब उसे नवनिर्मिति में उन गुणों का लाभ मिलता है। इन गुणों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। पहला, संवेदनशीलता। कोई भी रचना सुनने के बाद उस रचना का स्वरूप संवेदनशील कलाकार के तुरंत ध्यान में आता है। उक्त रचना के नैसर्गिक खंड कैसे और कितने हैं, उसके नाद की विशेषता और विविधता कैसी है आदि सब बातें उसके ख्याल में तत्काल आ जाती हैं, तथा उसमें अंतर्भूत शब्द संगति की भी उसे पहचान हो जाती है। तात्पर्य यह है कि संवेदनशील कलाकार को रचना का विश्लेषण करने की आदत सी पड़ जाती है। दूसरा है तर्क या अनुभव की क्षमता। संवेदनशीलता के फलस्वरूप रचना की अच्छी पहचान होने के बाद कलाकार अपनी तर्क शक्ति और अनुमान क्षमता द्वारा उक्त रचना के नए नए रूप कैसे बन सकेंगे इसका विचार करके प्रत्यक्षतः ऐसे रूप बनाकर उनका प्रयोग करता है। इस प्रक्रिया में अच्छे और स्तरीय रूपों की निर्मिति होती है। तीसरा है कल्पकता एवं सृजनशीलता। प्रतिभाशाली कल्पक कलाकार नए नए शब्दों का, नई शब्द संगति का, नए खंडों का निर्माण करता है और अपने इन गुणों के फलस्वरूप अपने वादन में वह असली नएपन का आनंद निर्माण करता है। चौथा है वैचारिक अनुशासनबद्धता। यह गुण किसी कलाकार में हो और अगर वह परंपरावादी हो तो उसके द्वारा नवनिर्मिति की संभावना बहुत कम है। पांचवा, वैचारिक लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। जिस कलाकार में यह गुण होता है वह हमेशा परंपरा, रिवाज और बंधन को तोड़कर कुछ क्रांतिकारक निर्मिति करने की कोशिश करता है। महान मनोवैज्ञानिक एडवर्ड डी बोनो की राय में उपर्युक्त बौद्धिक गुणों की प्राप्ति और उनका विकास आदमी कठोर प्रयासों से ही कर सकता है। इसीलिए कलाकार को हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। कुछ बौद्धिक क्रियाएं ऐसी होती हैं जिन्हें बार बार करने से आदमी की विचार शक्ति बढ़ सकती है। इन विवेचन का उद्देश्य यही है कि कलाकार को यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि कल्पकतापूर्ण निर्मिति सामान्य कलाकार के बस की बात नहीं है। पृष्ठ संख्या 211। कुछ कलाकार अकारण ही नवनिर्मिति तबला बजाने का प्रयत्न किया करते हैं। उसी प्रकार कभी कभी हम यह भी देखते हैं कि कुशल वादक परंपरागत घोंटा हुआ ही तबला बजाते हैं, फलतः उनके वादन में एक सुरापन आ जाता है और परिणाम यह होता है कि उनका वादन प्रभावहीन हो जाता है। कलाकार नवनिर्मिति क्यों नहीं करना चाहता या नहीं कर सकता, इस संबंध में मनोविज्ञान ने अध्ययनों परांत निम्नलिखित अनुमान निकाले हैं। पहला है असफलता की भीति। गलती होने पर लोग हंसेंगे, इस डर से परंपरागत सांचाबद्ध वादन करने की कलाकार की प्रवृत्ति। दूसरा है अधूरा ज्ञान और अपूर्ण शब्द संपत्ति। तीसरा धोखे से बचने की प्रवृत्ति, सुरक्षितावादी। चौथा उग्र परंपरावादिता और उससे निर्माण होने वाली सांचेबद्धता। पांचवा कल्पना रंजकता का अभाव। छठवां कुतूहल शून्यता। सातवां बौद्धिक सामान्यता। नवरचना के विषय में अपेक्षाएं। केवल गणित की सहायता से की गई रचनाएं शास्त्रबद्ध तो होती हैं, किंतु उनसे कला निर्मिति का आनंद प्राप्त नहीं होता। तबले की रचना यानी काव्य है और उत्कृष्ट काव्य समृद्ध भाषा एवं शब्द अलंकारों की सहायता से ही निर्माण होता है। नई रचनाओं की निर्मिति निम्नांकित चार बातों के आदर्श समन्वय से हो तो वे निश्चय ही श्रवणीय एवं लोकप्रिय होंगी। पहला प्रतिभा शक्ति की अभिव्यक्तियों में से निर्माण होने वाली नई नई रचना कृतियां। दूसरा समृद्ध अर्थवाही भाषा का चुनाव। तीसरा अनुप्रास यमक आदि शब्द अलंकारों का यथोचित प्रयोग। चौथा गणित और हिसाब के विविध रूप।